आंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन संस्था के द्वारा प्रस्तापित इस भागवत कथा में पधारे हुए समस्त वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। यहां पर प्रति रविवार को श्रीमद् भागवत महाराज चित्रकेतु की कथा होती है। षष्टम स्कंद 17वां अध्याय श्लोक संख्या 27। श्री रुद्र उवाच दृष्टवत्य शिशुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मण महात्म्यं भृत्य भृत्यानां निष्प्रिहाणां महात्मनां। सती जी ने चित्रकेतु महाराज को श्राप दे दिया कि आप असुर बन जाइए। चित्रकेतु महाराज तो वह स्थान छोड़कर चले गए और सती जी को हृदय में बहुत पछतावा हुआ। और यहां पर शिव जी उपदेश देते हैं कि हे सुश्रोणी, हे सुंदर दिखने में वाली सती, तुम तो केवल दिखने में सुंदर हो, ब्यूटीफुल, लेकिन तुम्हारे से भी सुंदर ये भगवान के भक्त है कि इतना तुमने श्राप दे दिया लेकिन ये सहन करके चले गए। इसलिए यहां पर शिव जी अपनी पत्नी को कहते हैं सुश्रोणी, हे सुंदर स्वभाव में सुंदर दिखने वाली, देख लिया तुमने भगवान के शुद्ध भक्तों का स्वभाव, उनका व्यवहार। सती जी को ऐसा लगा कि मैं कुछ अच्छा कार्य कर रही हूं और अपने पति देव को पूछे बगैर ही सती जी अनाप शनाप बकने लगी और तुरंत ही श्राप दे दिया। अतो पापी यसि योनि आसुरीम याप्ति दुर्मते, हे दुर्मति जाओ तुम आसुर पाप योनि में चले जाओ। जैसे ही सती जी ने श्राप दे दिया लेकिन चित्रकेतु महाराज एक शब्द भी नहीं बोले, प्रतिगृह्यामि ते शापम आत्मनो अंजलिम अंबिके, हे अंबिके, हे सती जी, आपने जो मुझे श्राप दिया है वो मेरे कर्म के अनुसार मुझे मिला है। इस संसार में हर एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि इस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया है, वास्तव में कोई किसी को दुख नहीं देता है। यहां पर चित्रकेतु महाराज कहते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मेरी पत्नी मुझे दुख देती है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पति ने मुझे दुख दिया है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे माता पिता मुझे दुख देते हैं। वास्तव में इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता है, लेकिन वो पिता के द्वारा दुख मिलता है, माध्यम बनते हैं पिता, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे पिता ने मुझे दुख दिया है। माध्यम हमारी बहू बनती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बहू ने मुझे दुख दिया है। तो यहां पर चित्रकेतु महाराज कहते हैं कि आपने मुझे जो श्राप दिया है वे मैं स्वीकार करता हूं, वो आपने मुझे श्राप नहीं दिया है, मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे ये श्राप मिला है। और देवता लोग जो भी कार्य करते हैं ना, उस संसार के हित के लिए होता है। इस संसार में जो भी कार्य होता है, ये सब अच्छा अच्छे के लिए होता है। कोई भी चीज अच्छे के लिए होती है, चाहे पत्नी के साथ हमारा कहते हैं ना झगड़ा हो जाना, किसी मित्र के साथ झगड़ा हो जाना, इसमें भगवान के कुछ, भगवान का कुछ लीला है, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं। एक राज्य में राजा थे, वो राजा जंगल में शिकार उनको करने जाना था, तो उन्होंने तलवार की धार बनाई। तलवार की धार होती है ना, तलवार की धार बनाने लगे और तलवार की धार बनाते बनाते उनका अंगूठा कट गया, यहां से थोड़ा सा अंगूठा कट गया नाखून, और कट गया तो मंत्री को कहा, अरे मंत्री मैंने तो आज तलवार की धार निकाला तो मेरा अंगूठा कट गया थोड़ा सा। तो मंत्री ने कहा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जे था हारू था इसे। राजा सोचने लगा कि मैं इसे पगार देता हूं तो मेरी वाह वाह नहीं करता है, बोलता है जो होता है अच्छा होता है, ये तो जले पे नमक छिड़कना हो गया। तब राजा ने कहा, सिपाहियों इसे जेल में डाल दो, काल कोठरी में डाल दो, यहां पर मुझे दुख मिला है, कष्ट हो रहा है, और कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। और राजा शिकार खेलने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में गया, और इतनी दूर जंगल में गया कि वहां पर बहुत सारे आदिवासी लोग थे, आदिवासी होते हैं ना, वो आदिवासी लोगों ने घेर लिया राजा को, और बहुत नाचते हैं आदिवासी लोग। और उस दिन अमावस्या थी, अमावस्या की काली चौदस बोलते हैं ना, और राजा को किडनैप कर दिया, और राजा को कहते इसको बलि चढ़ाओ, बलि, इसको स्नान कराओ, अच्छा से अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाओ। और तब राजा को जैसे ही बलि देने के लिए जा रहे थे, तो उस व्यक्ति ने देखा कि इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, ये बलि देने के लिए लायक नहीं है। समझ गए, ये बलि देने के लिए लायक नहीं, इसका तो अंगूठा कट गया है, तो इसको छोड़ दो, आजाद कर दो, जाने दो। और जैसे ही राजा उस महल में गया, और महल में जाते ही राजा ने सबसे पहले मंत्री को दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। और राजा ने मंत्री को कहा कि अरे मंत्री जी, आपने जो कहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, आज मुझे पता चला। कई लोग बोलते हैं ना, मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, लेकिन वो भगवान ही सब कुछ कराते हैं। और हम सब लोग बोलते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, कुछ बुरा नहीं होता है। तो मंत्री को हाथ जोड़ा और मंत्री से कहा कि अरे मंत्री, आपने जो कहा था ना कि भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, आज मुझे पता चला, अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता ना तो मेरा गला कट जाता था, मेरा अगर अंगूठा नहीं कटा होता ना तो मेरा गला कट जाता। तब मंत्री ने कहा, राजा जी आपको अब पता चल गया ना? बोला हाँ अब पता चल गया, लेकिन मेरी एक बात है, मेरा एक प्रश्न है, कि ठीक है मेरा अंगूठा कट गया, वो मैं जंगल में गया और मैं बच गया, लेकिन तुम जेल में गए, इसमें क्या अच्छा हो गया बताओ? तुमने क्या गलत किया था तुमको जेल में डाला? तब मंत्री ने कहा कि राजा अगर मैं बाहर होता तो आप मेरे को भी रथ में ले जाते साथ में, कि चलो मंत्री तुम मेरे साथ चलो, और जैसे ही मैं रथ में आपके साथ जाता तो आपका तो अंगूठा कटा हुआ तो आपकी बलि नहीं करती लेकिन मेरी बलि हो जाती थी, क्योंकि मेरे तो शरीर में कुछ नहीं हुआ था ना, इसलिए भगवान ने मुझे जेल में डाल दिया और आपको जंगल में। इसलिए भगवान जो करते हैं ना हमारे जीवन में, वे सब कुछ भगवान का आगे का कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट होता है कि इसको मुझे ये दुख देना है, ये दुख देकर मुझे भगवान अपनी भक्ति में लगाते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैंने क्या किया, मैंने गए जन्म में किसी का बुरा किया कि इस जीवन में किया? लेकिन जो भी किया हो भगवान को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ठाकुर जी और दुख दो मुझे, मैं सहन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन रात दिन वही घिसी पिटी जिंदगी, मेरा लड़का ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा पोता ऐसा है, मेरे पति ऐसा है, उसी में उसी चिंता में पूरा जीवन चला जाएगा, लेकिन प्रभु का स्मरण नहीं हो पाएगा। सुनिए, देखिए, जानिए कि इस संसार में जो भी चीज आप कर रहे हो ना, उसमें से एक भी चीज आपके साथ आने वाली नहीं है, आने वाली है तो एक केवल हरि का नाम। जो जितना इस वाणी से आप भगवान का नाम लोगे ना, वो आपके साथ जाएगा, क्योंकि सच्चा धन यही है जो मीरा और नरसिंह मेहता ने लिया है। तो भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हे सती जी, आपने जो मुझे श्राप दिया है ना, वो मैं शिरोधार्य करता हूं। ऐसा ही प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है कि एक संसार, इस संसार के सबसे बड़े राजा जिनका नाम था इंद्रधूम राजा, और इंद्रधूम राजा पूरी पृथ्वी के राजा थे, लेकिन साथ साथ में भगवान का भजन भी करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। तो एक समय की घटना है कि अगस्त्य ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ उनकी कुटिया में पधारे, और अगस्त्य ऋषि मुनि प्यासे थे, उनको प्यास लगी थी, तो राजा को कहा, राजा मुझे पानी दो। लेकिन राजा तो भगवान के ध्यान में भगवान का नाम जप कर रहे थे, हरे कृष्णा। राजा भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान के ध्यान में मग्न थे, और यहां पर गेट पे, दरवाजे पे अगस्त्य ऋषि मुनि कह रहे हैं कि मुझे पानी दीजिए, मुझे जल चाहिए, मैं प्यासा हूं। लेकिन अगस्त्य ऋषि मुनि, उनको ये पता नहीं था कि ये राजा तो भगवान का भक्ति कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, इनकी भक्ति में बाधा नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगस्त्य ऋषि मुनि क्रोधित हो गए। भक्तों, हमारे शास्त्र में दो ऋषि मुनि है ना, बहुत क्रोधित होते हैं। सबसे पहले दुर्वासा ऋषि मुनि, जितने लोग है ना श्राप देने में, जितने लोगों को श्राप दिया है ना, सबसे ज्यादा दुर्वासा ऋषि मुनि हो गए, और दूसरे अगस्त्य ऋषि मुनि। तो अगस्त्य ऋषि मुनि ने कहा कि अरे राजा, तू तेरी अहमता में, तू राजा है इसलिए इतना अहंकार तुझ में आ गया है कि ऋषि मुनियों का तू अपमान कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप दे देता हूं कि तू जड़ मतलब हाथी जैसा बन जा। और जैसे ही श्राप दिया, राजा इंद्रधूम उस समाधि में से खड़े हुए और उनको दंडवत प्रणाम किया। यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, शाप और वरदान देने में जो अगस्त ऋषि मुनि ने जैसे ही श्राप दिया, तब राजा इंद्रदुम ने कहा कि हे गुरुदेव, हे ऋषि मुनि, ये मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे मिला है, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है। तो इस छोटी सी कथा से हमें ये जानने को मिलता है, जीवन में कभी भी जो भी दुख मिले ना, उसे सहन कर लेना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब दुख आता है ना, तो दुख से भाग जाते हैं और सुख के निकट जाते हैं। सुख कहाँ है, सुख कहाँ है? बॉम्बे में है, सूरत में है, दिल्ली में है, पालनपुर में है, अमेरिका में है, सब लोग अभी मंगल पे जा रहे हैं सुख ढूंढने के लिए, चंद्र पे। सुख हमारे हृदय में है भक्तों। अगर हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे और भगवत प्रसाद, भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद अगर हम लेंगे ना, तो निश्चित हमारे हृदय में इतना सुख मिलेगा जिसकी कोई सीमा नहीं। इस संसार के बड़े बड़े राजा ऋषि मुनियों के चरणों में झुक जाते थे। ये तो अभी कलयुग में किसी को श्रद्धा नहीं रही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो सुख भगवान और भगवान के भक्त में है ना, वो सुख इस संसार में किसी के पास नहीं है। भक्तों, इस संसार में बाहर से तो सब जेवर गहने बड़े बड़े कहते ना, भारी भारी कपड़े, भारी भारी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन अंदर तो उनका कलेजा जलता है, हृदय जलता है, रात को नींद भी नहीं आती है, इतना अंदर ईर्ष्या भरा है, इतना हृदय जल रहा है, क्या करेंगे। कहते इतना हृदय जल रहा है ना कि अगर आप बासमती चावल धो के रख दो ना, तो 5 मिनट में पक जाएंगे, इतना हृदय जल रहा है। काळजू बड़ी रियु छे अंदर से, लेकिन इस तप्त अग्नि में से अगर निकलना है तो सरोवर में जाना होगा, और वो सरोवर क्या है, भगवान के चरण की शरण लेना। जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान की शरण लेगा ना, निश्चित गारंटी है वो हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में कई कई दृष्टांत है कि दुर्योधन के जीवन में आप देखिए कि उसने भगवान की शरण नहीं ली और 5 पांडवों ने भगवान की शरण ली, तो पांडवों का कल्याण हुआ और दुर्योधन की अधोगति हुई। रावण और विभीषण ये दोनों भाई थे, लेकिन एक भगवान का भक्त और एक कौन निकला, रावण सबसे बड़ा असुर। आपको ये पता नहीं होगा कि रावण के पिता का नाम क्या है किसी को पता? रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ है, रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा, उनके पिता का नाम है पुलत्स ऋषि मुनि, ब्राह्मण का लड़का। और आप सबको पता है, ये तो जग जाहिर है कि रावण ने क्या क्या करतूत किए हैं जीवन में। भक्तों, हृदय में आप एक बार एक स्मरण कीजिए कि एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ रावण की ये दशा है। तो इस संसार में कई लोग कहते हैं ना कि हम तो ब्राह्मण है, शर्मा है, एकनाथ, दुबे, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, शर्मा, अलग अलग अटक होते हैं, हम इस परिवार से, हम इस खानदान से है, अलग अलग कहते हैं ना कि हम इस कुल से है, लेकिन उनके कर्म कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। तो जीवन में आपके कर्म जैसे होंगे ना, उस हिसाब से आपकी जात पहचानी जाती है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन शूद्र जैसा कार्य करते हैं तो ब्राह्मण नहीं होते हैं, वो शूद्र से भी गया गुजरा होता है। हम हमारे शास्त्र में बताया गया है, जन्मना जायते शूद्रम, जन्म से सभी शूद्र है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सभी लोग शूद्र है। लेकिन कहते हैं वेद पाठात, जो वेदों का अध्ययन करता है, समाज को ज्ञान देता है, भक्ति देता है, जन्मना जायते शूद्रम संस्कारात भवेत द्विज, एक गुरु के सानिध्य में रहकर जनोई संस्कार, ब्राह्मण संस्कार, द्विज आदि संस्कार करे, वेद पाठात भवेद विप्र, और विप्र ब्राह्मण किसे कहते हैं, जो वेदों का अध्ययन करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जना इति ब्राह्मण, जो भगवान का साक्षात्कार करे उसे कहते हैं ब्राह्मण। बताइए ब्राह्मण में ये गुण होना चाहिए। रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ है लेकिन उसके कर्म कैसे हैं? लेकिन उनका ही छोटा भाई विभीषण देखिए कि उन्होंने पूरा जीवन भगवान की भक्ति की है। तो हमारे संस्कार के ऊपर जाता है, हमारे कुल में, हमारे परिवार में हमारे बच्चे, उनके स्वभाव उनके अनुसार होता है। कई प्रकार, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बचपन से ही चोरी करते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बचपन से ही ठाकुर जी का नाम लेते हैं। तो इसके ऊपर क्या होता है, माँ बाप के संस्कार होते हैं। अगर बच्चा एक रुपए का भी चोरी करता है ना, उसी क्षण उसी समय अगर उस बच्चे को बहुत मारा पीटा होता या धमकाया होता ना, तो बड़ा होके वो बच्चा कभी भी चोरी नहीं करेगा। लेकिन एक रुपया चोरी किया, फिर 10 रुपया चोरी किया, फिर 100 रुपया, फिर क्या किया, एटीएम तोड़ेगा, किसी का दुकान तोड़ेगा, किसी का घर तोड़ के सब चोरी करेगा। तो बचपन से ही जैसे संस्कार अपने बच्चे को देते हैं, बड़ा होकर वो ऐसा होता है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। हम लोगों अपने बच्चों को बड़े बड़े कहते हैं ना, डिग्री प्राप्त कराना चाहते हैं, बड़े बड़े क्लब में भेजना चाहते हैं, बड़े बड़े डांस में अलग अलग जगह पे भेजना चाहते हैं, लेकिन कभी मंदिर में नहीं भेजते हैं कि बेटा चलो मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, भगवान के धाम में जाते हैं, चलिए पिकनिक में भी जाना है तो भगवान के धाम में जाना चाहिए, द्वारिका, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मथुरा, ऐसे भगवान के धाम में जाएंगे ना, जिस स्थान में हम जाएंगे ना, उस स्थान का हमारे शरीर में प्रभाव पड़ता है। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। अगर आप ऐसे गलत स्थान में जाएंगे ना, समझो कोई शराब खाना है और आप दारू नहीं पीते हैं ना, फिर भी आपकी इच्छा हो जाएगी चलो मैं भी दारू पी लूं। अगर कोई सिगरेट पीता है और ऐसे ग्रुप में अगर आप ज्वाइंट हो गए तो आप भी सिगरेट पीने लगेंगे। अगर कहीं पर सत्संग हो रहा है, देखिए यहाँ पर सत्संग हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ नए लोग है, उनकी इच्छा भी नहीं है, लेकिन क्या करे, रूम में भी सुनने वाला तो है, तो क्यों ना बाहर बैठकर सुनूं, जबरदस्ती। लेकिन कहते जैसा संग वैसा रंग, आप अच्छे संग अच्छी संगति में रहोगे तो आपका अच्छा संग हो जाएगा, और बुरी संगति करोगे तो बुरा। इसलिए जीवन में कुछ भी हो, चाहे हमारा मन लगे कि न लगे, लेकिन हमें 2400 घंटा अपनी वाणी से ठाकुर जी का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान हमें जो कुछ देते हैं ना, इस संसार का कोई भी जीव हमें नहीं दे पाएगा। सबसे पहले तो ठाकुर जी भगवान हमारे श्वास चला रहे हैं, हमारे दिल की धड़कन धप धप हो रही है। अगर यहां पर बंद हो जाएगी तो 108 गेट पे बुलाना पड़ेगा, ले जाओ भाई राजस्थान मारवाड़, जोधपुर उदयपुर जहाँ के भी है, आगरा के है, पालनपुर के है, मुंबई के है, जहाँ कहीं भी ले जाओ भाई उठा के। तो भगवान हमारी श्वास चला रहे हैं, ये हवा दे रहे हैं, फ्री में हवा है। बोलिए कोई दाम है इसका? कभी भी नहीं। लेकिन इस संसार का व्यक्ति थोड़ा भी उपकार करेगा ना, हमें धन देगा, हमारा पालन पोषण करेगा, तो तुरंत सुना देगा। बहू होती ना बहू, ये तो हम है तो आपको रोटी दे रहे, खाना दे रहे, अगर नहीं देंगे तो कौन देगा आपको? जाओ गांव में किसी के घर पे और माँ और पिता क्या बोलते हैं, ये तो हम थे तो हमने आपको बड़ा किया, बताओ कौन कर रहा है? अरे सब कुछ कर रहे हैं ठाकुर जी, भगवान कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि मैं किया, मैंने किया, मैं नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। वास्तव में सब कुछ करता धरता जो भी है ठाकुर जी है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये सब कुछ मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, घर बनाया, गाड़ी बनाया, बंगला किया, बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बहू लाई, बेटा लाया, और आज ही मुझे सब कुछ दुख पड़ रहा है सब। लेकिन जब आप है ना सब भगवान के ऊपर छोड़ देंगे ना, तो जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने किया सब कुछ, मैंने किया, तो ठाकुर जी बोलते ठीक दुखी हो जाओ फिर। लेकिन जब आप सोचोगे ना अच्छा हुआ है तो ठाकुर जी ने किया है, जो भी हुआ है वो भगवान ही करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन हम सब कहते हम मैंने किया। जैसे आप खेत में जब बैलगाड़ी जाती है ना, तो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता भी जाता है, मालूम है? बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जाता है, वो कुत्ते को ऐसा लगता है बैलगाड़ी का सब भार है ना मैं उठा रहा हूं। बताओ इसमें जितनी गोनी भरी है, जितने मनुष्य हैं, और बैलगाड़ी को भी मैं ही खींच रहा हूं, और कुत्ता धीरे 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 जाता है। वैसे ही इस संसार का भी जीवात्मा की हालत यही है, हूं करूं बस मैं किया मैंने किया, बस एज अभिमान, बस वही अभिमान है। सकट नो भार स्वान उपाड़े। जैसे एक कुत्ता बैलगाड़ी को जब नीचे जाता है ना, तो उसे ऐसा ही लगता है कि पूरी बैलगाड़ी का भार मुझ पर है। लेकिन वो बैलगाड़ी का भार कौन खींच रहा है? दोनों बैल खींच रहे हैं। लेकिन कुत्ते को क्या लगता है? सब मैंने उठाया, मैंने किया। 500 किलो वजन और पांच आदमी 100-100 किलो वाले, और सबका वजन मैं उठा रहा हूं। भगवान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब इस संसार का कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, वो सोचता है ना सब मैंने किया, तो भगवान सब बोझा क्या कर देते हैं, उसके ऊपर ही डालते, ले अबे भोगो। लेकिन जब ठाकुर जी को अर्पण कर देंगे ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा कुछ नहीं है ठाकुर जी, ये सब कुछ आप ही का है, और आप ही ऐसी लीला करते हैं मोह ममता कि ये मेरा है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे देवर हैं, मेरी बहू है, मेरा मेरा करके मर जाते हैं, और साथ में कुछ ले जाने वाले नहीं है। और किसी को समझाते हैं ना तो भी बोलते मालूम है सब कोई साथ में नहीं जाने वाला है, लेकिन छूटता नहीं, छूटता है अंदर है ना, वो छूटेगा नहीं। वो ब्रह्मा जी आएंगे ना, भगवान आएंगे ना समझाने को, लेकिन सुधरने वाले नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़कर प्रभु का भजन करूं, नहीं छूटेगा। जब तक हमारे हृदय में पाप भरे है ना, तब तक हमारा मन भगवान की माला में कभी नहीं लगेगा, इतना समझ लीजिए। सत्संग में भी अगर आप बैठे रहोगे ना, तो आपका मन गेट की ओर ही रहेगा, कब सत्संग खत्म हो जाए, कब घर पे जाऊं। घर पे दुख मिलेगा ना तो भी वो घर पे ही जाएगा, बोला जहां पर दुख मिलता है ना वहां पर दौड़ा दौड़ा भाग जाएगा, और जहां पर सुख मिलता है वहां एक घड़ी भी नहीं मिलती। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज हमारे गुरु महाराज है, गुरु महाराज कहते हैं कि पूरा दिन कंपनी में गाली खाता है, ट्रेन में गाली खाता है, बस में गाली खाता है, सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को घर पे भी जाएगा बेल बजाता है टिंग टोंग, बेल बजाता है तो मन में सोचता है कि जैसे ही घर में जाऊंगा ना तो बाहर से भी ज्यादा टेंशन घर में मिलेगा, लेकिन फिर भी बेल बजाएगा। उसको मालूम है कि इधर भी मुझे बहुत दुख मिलने वाला है, लेकिन वही बेल बजाएगा, और जैसे ही बेल बजाएगा चप्पल लाया, सब्जी लाया, सिलेंडर का बोतल खत्म हो गया है, और बच्चा बोलेगा मेरा कंप्यूटर का फीस भरना है, क्लासेस का फीस भरना है, पूरा दिन 12 घंटे की नौकरी करके घर पे आया कि घर पे शांति से बैठूं, लेकिन घर पे भी क्या हो गया, झमेला। ऐसा ही एक व्यक्ति था हम लोगों के जैसा, वो व्यक्ति घर पे गया और अपने लव मैरिज वाली थी, पत्नी ने कहा चप्पल लाया कि नहीं लाया, इतना टेंशन था नहीं लाया, कल लेके आना नहीं तो खाना नहीं दूंगी, और कल भी शाम को 8 बजे रात को घर पे गया, और घर पे गया तो पत्नी ने कहा चप्पल लाया कि नहीं लाया, और जैसे ही वो जूना वाला था ना चप्पल उठाया और राप करके एक दिया पीठ पे एक चप्पल मारा, और दौड़ता दौड़ता चप्पल की दुकान में गया, जैसे आसो पालव है ना इधर, इसके बगल में चप्पल की बहुत दुकान है, तो चप्पल की दुकान में गया और चप्पल वाले से कहा चप्पल दो, पर कौन से नंबर की दो, एक पीठ पे पड़ा है निशान देख लो, मेरे को तो मालूम नहीं लेकिन छापा पीछे पड़ा है कौन से नंबर की है, 7 नंबर की है कि 6 नंबर वाली है। तो ऐसी दशा पूरे संसार का दुख भोगतेगा लेकिन उसी घर में जाएगा। इस संसार में सब जगह पर दुख है लेकिन सुख एकमात्र भगवान की शरण में है, भगवान की छत्र छाया में है। चित्रकेतु महाराज कहते हैं अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार किसी को सुख मिलता है किसी को दुख मिलता है। जैसे कई लोग ट्रेन में जाते हैं तो टाइम टू टाइम जाना पड़ता है, जैसे अहमदाबाद आगरा 7:45 बजे आती है रात को, 7:40 को आती है अहमदाबाद आगरा यहाँ पर पालनपुर में, तो सब लोग टाइम टू टाइम जाते हैं, 7:30 बजे पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, लेकिन वही ट्रेन जो टाइम टू टाइम आया है वो ट्रेन वाला जो स्टेशन मास्टर कहता है कि हम माफी चाहते हैं कि ये जो अहमदाबाद आगरा फोर्ट जो ट्रेन है वो 2 घंटे देरी से चल रही है, वो स्टेशन पे कभी यहाँ पे जाएगा कभी यहाँ, कभी 2 नंबर पे जाएगा कभी बाहर जाएगा, क्या करे, और स्टेशन पर मास्टर को गाली देगा, रेलवे वाले को गाली देगा, सबको गाली देगा, उसका पूरा मूड ऑफ हो जाएगा। और एक व्यक्ति का उसी ट्रेन में रिजर्वेशन है लेकिन वो व्यक्ति 9:30 बजे आया, 9:30 बजे रेलवे स्टेशन पे आया, चलो दूसरी ट्रेन में चला जाऊंगा मेरा रिजर्वेशन तो गया, लेकिन वह व्यक्ति जैसे ही आया तब अनाउंसमेंट हुआ कि जो ट्रेन लेट हो गई थी अभी वो आ रही है 9:30 बजे, वो तो खुश हो गया, जो लेट हो गया था ना वो तो खुश हो गया कि अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए, बरोबर हो गया। तो यहाँ पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसने मुझे दुख दिया तो ये मेरा दुश्मन है, और इसने मुझे सुख दिया तो ये मेरा दोस्त, ये मेरा मित्र है। जैसे वो व्यक्ति 7:30 बजे आया तो उसे दो घंटा रुकना पड़ा तो रेलवे वालों को गाली दिया, भारत सरकार को गाली दिया, सबको गाली दिया कि मैं कभी से आया हूँ और ट्रेन वालों का कोई टाइमिंग नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, इतनी ट्रेन लेट होगी तो कैसे चलेगा। लेकिन एक व्यक्ति देर से आया और उसको ट्रेन मिल गई तो वो तो कहने लगा वाह आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। ऐसा ही होना चाहिए। और ट्रेन वाले को जो ड्राइवर है उसको तो सलाम मारने लगा, बहुत बढ़िया। नहीं तो मेरा आज एसी में टिकट था, एक टिकट 2000 का, तो मेरे तो 5 मेंबर है, 10000 का नुकसान होने वाला था। अच्छा हुआ बताओ। तो दोनों जन को ट्रेन में जाना है, लेकिन एक को सुख मिल रहा है और एक को दुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो 2 घंटे लेट हो गई इसलिए एक व्यक्ति को दुख मिला और एक व्यक्ति 2 घंटे लेट हो गया था, लेकिन टाइम टू टाइम ट्रेन मिली तो उसको क्या मिला? सुख मिला। और जैसे ही वो ट्रेन में बैठे तो दोनों जन, एक को सुख मिला, आनंद में सो गया, और एक व्यक्ति पूरा सफर में यही कहता है ये लालू प्रसाद ऐसा है, उसका मैनेजमेंट ट्रेन का ऐसा है, जो भी है, जो भी ट्रेन के जो मंत्री होंगे उनको गाली देगा, सिग्नल वालों को गाली देगा, इसको गाली देगा, ड्राइवर को गाली देगा, और कहेंगे पूरा भारत में ऐसा ही होता है। आप देखिए ट्रेन में जाते तो क्या होता है, इस सरकार ने ऐसा कर दिया, पुलिस वालों ने ऐसा कर दिया, हमारी सरकार कुछ अच्छी नहीं है, भारत में सब ऐसे ही होते हैं, ऐसा होता है ना, सुनने को मिलता है ना, ट्रेन में बस में बोलते रहते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा हो जाएगा, अगर मोदी जी अगर एक एक तेल का डब्बा देगा तिरुपति तो बहुत अच्छा है, भजिया खाएंगे बेसन में, बताओ। हमारा अच्छा करेगा तो अच्छा है और बुरा होगा तो बुरा। तो एक व्यक्ति को सुख मिलता है, एक व्यक्ति को दुख मिलता है। अभी एक व्यक्ति मेरा पहचान वाला था, व्यक्ति कह रहा है कि अरे भाई इतना सारा स्वेटर में लाया हूं, इतना सारा स्वेटर लाया हूं लेकिन ठंडी नहीं पड़ रही है, बताओ। मैं बेचने के लिए इतना सारा स्वेटर लाया और ठंडी नहीं पड़ रही, मेरा माल बिकता नहीं है। और अभी मैं उसको पूछा कि भाई क्या हो रहा है, ये बहुत अच्छा हुआ ठंडी पड़ा तो मेरा सब माल बिक गया, अच्छा ठंडी ऐसा ही पड़ना चाहिए, बता। और आइसक्रीम वाले के पास गए, आइसक्रीम वाला भरका दे दी, अमूल वाला, आइसक्रीम वाला सोच रहा है अरे बहुत ठंडी पड़ रहा है कोई खाने को नहीं आ रहा है आइसक्रीम, बताओ ऐसी ठंडी में कौन आइसक्रीम खाएगा, बताओ। थोड़ा गर्मी पड़ेगा ना तो धंधा अच्छा होता है। अभी ये ठंडी का सीजन एक व्यक्ति को दुख दे रहा है और एक व्यक्ति को सुख दे रहा है, बताओ। स्वेटर वाले को, टोपी वाले को सुख दे रहा है, ठंडी पड़नी चाहिए, और आइसक्रीम वाले वो सोच रहे ठंडी नहीं पड़नी चाहिए नहीं तो मेरा माल बिकने वाला नहीं है, बताओ। तो इस संसार में एक ही चीज से एक व्यक्ति को दुख मिल रहा है और एक वस्तु से सुख मिल रहा है। कभी कभी एक बेटे से सुख मिलता है और एक बेटे से दुख मिलता है। इसलिए इस बात से आप समझिए कि हमारे कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिले उससे भुगतना चाहिए। तो यहां पर चित्रकेतु महाराज भी यही चीज पार्वती को बता रहे हैं कि आपने मुझे श्राप दिया तो मुझे, मेरे मन में ऐसा नहीं कि आपने मुझे क्यों श्राप दिया, ये मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिला है, मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं असुर बनने वाला हूं इसलिए आपके द्वारा मैं असुर बन गया। तो यहां पर शिव जी कहते हैं कि देखा भगवान के भक्तों का स्वभाव, और तुम तो केवल दिखने में सुंदर हो लेकिन भगवान के भक्त कैसे हैं, हरेर अद्भुत कर्मणा, भगवान के भक्तों के कर्म आप देखो सती। नारायण परा सर्वे कुतश्चनन बिव्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्व अपितुल्यार्थ दर्शिन। हे सती, भगवान के भक्त को अगर नरक में भी भेज देना चाहे स्वर्ग में भेज दो तो स्वर्ग हो नरक हो चाहे पृथ्वी हो सब एक समान लगते हैं। आज तुमने देख लिया शिव जी कहते हैं कि हे देवी ये जो शरीर हमें जो मिला है ना ये शरीर एकमात्र दुख देने के लिए मिला है और कुछ नहीं। अगर हम इस शरीर से सुखी होना चाहते हैं ना तो जीवन में एक ही कार्य करना पड़ेगा और वो है ठाकुर जी का भजन। जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है उसके शरीर का तेज देखिए, उसकी वाणी उसका स्वभाव उसका व्यवहार देखिए। जो भी व्यक्ति जो भी भगवान का भक्त भगवान का भजन करता है ना उसके शरीर का तेज देखिए और जो भजन नहीं करता है उसके शरीर की आभा देखिए, पूरा शरीर फीका काला काला। और जो भजन करते हैं भक्ति करते हैं ना उसके शरीर पे भक्ति का तेज होता है, भक्ति का प्रभाव होता है। तो दुख देने के लिए ही हमें शरीर मिला है भक्तों, और इस शरीर से अगर हम सुखी होना चाहते हैं ना तो जीवन में कभी नहीं हो मिलेगा। जैसे ये इसे कहते हैं प्रथिका आश्रम, यहाँ पर बोर्ड मारा है बाहर प्रथिका आश्रम, तो यहाँ पर आपको रहने की सुविधा मिलेगी और यहाँ पर कोई सोचेगा नहीं मुझे दारू पीने को मिलेगा मांस खाने को मिलेगा, यहाँ पर होटल तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर रहने की सुविधा है, क्योंकि बाहर क्या लिखा है प्रथिका आश्रम, यहां पर रहने की सुविधा है तो यहां पर केवल यही चीज मिलेगी। वैसे ही भगवान ने जब ये संसार बनाया तो इस संसार के ऊपर एक लेबल मार दिया है सिक्का, क्या अर्जुन मैंने ये संसार बनाया है लेकिन दुख देने के लिए बनाया है, इसलिए एक भी व्यक्ति को सुख मिलने वाला, चाहे अमेरिका दौड़ो चाहे राजस्थान जाओ चाहे दिल्ली जाओ कलकत्ता जाओ बंबई जाओ कहीं पर भी जाओ लेकिन सुख मिलने वाला नहीं है। धीरूभाई अंबानी जब अंतिम सांस गिन रहे थे तो अपने दोनों बेटों को दे दिया, ऑफिस का चाबी घर का चाबी गाड़ी का चाबी फैक्ट्री का चाबी गोदाम का चाबी सब चाबी दे दिया अनिल और मुकेश अंबानी दोनों कि बेटा मैंने अपने जीवन में सुख प्राप्त करने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे मेरे जीवन में सुख मिला, और ये ले लीजिए फैक्ट्री ऑफिस घर सबकी चाबियां और आप सुख ढूंढिए अगर आपको मिल जाए तो। वे भी ढूंढ रहे हैं ना, धीरूभाई अंबानी तो चले गए और उनके पिताजी भी क्या नाम था हीराचंद आपको पता है, और उनकी मम्मी का नाम धीरूभाई की मम्मी का नाम जमुना बेन अंबानी, तो उनके जीवन में आप देखिए, मैंने तो उनका जीवन चरित्र भी देखा है कि वो पुष्टि मार्ग में श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में उनकी श्रीनाथ जी भगवान की बहुत भक्ति करते थे जमुना बेन और हीराचंद जी, और अपने जीवन में उन्होंने बहुत पुण्य किया है बहुत भक्ति किया है, इसलिए आप देखिए कि उनके पुत्र भी ऐसे हैं, उनके परिवार में भी सब लोग आज भक्ति करते हैं श्रीनाथ जी भगवान की। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं कि संसार में जो भी व्यक्ति आया है कुछ भी लेके नहीं जाएगा, अगर यहां से आप ले जाओगे तो ठाकुर जी का किया हुआ भजन, इस आत्मा को आप भव बंधन में मत डालिए, आपका समय बहुत कीमती है और आप बहुत भाग्यशाली है, आप ऐसा अपने अपने आप को निम्न मत समझिए, बहुत भाग्य किए हैं कि आपको ऐसा सत्संग मिल रहा है आपको ऐसी भक्ति मिल रही है कि आपने भारत भूमि में जन्म लिया है, तो इस मनुष्य देह को ऐसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, गुटखा खाना मावा खाना दारू पीना गलत काम करना ये हमको शोभा नहीं देता है, हम किस कुल के हैं हम किस खानदान से हैं ये देखिए, हमारे परिवार में किसी सा गलत कार्य नहीं किया होगा लेकिन हम सब गलत कार्य करते करते हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हम नरक में डाल रहे हैं, इसलिए इस देह से आप हरि भजन कीजिए, ठाकुर जी का नाम लीजिए। जितना आप लोगे नाम उतना आपके साथ आएगा, और जितना इस संसार का धन कमाएंगे ना वो आपको भव बंधन में डालेगा। इसलिए ठाकुर जी का नाम निरंतर लेते रहिए, 2400 घंटा भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन किसकी जिह्वा पे आएगा? जिसने जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है उसकी जीभ पर आएगा। आता है? बताइए। हम बहुत कोशिश करते हैं कि मैं भगवान का नाम लूं, लेकिन संसार का नाम आएगा लेकिन भगवान का नाम नहीं आएगा। आप कल से कोशिश कीजिए कि मैं भगवान का नाम लूं, जीवन में आपको भगवान का नाम नहीं आएगा लेकिन संसार की बात सब याद आएगी। इसके पास से इतना पैसा लेना है, इसको फोन करना है, यहाँ पर सब्जी लेने जाना है, इतना माल लेना है, सब कुछ याद आएगा और पूरा दिन बोलते रहेंगे उसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, लेकिन भगवान का नाम नहीं आएगा। थोड़ी देर लेंगे राम 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 कृष्ण कृष्ण भगवान का नाम लेंगे, फिर भूल जाएंगे, भगवान की माया भुला देगी, क्योंकि अंदर पाप है ना, तो पाप क्या होगा? जैसे वो मोटर होती है ना, पानी की मोटर, उसमें अगर कचरा और हवा आ गई ना, एयर, एयर क्या बोलते हैं, एयर, उसमें एयर हवा आएगी ना, तो कितना भी भारी मोटर होगा ना, 2 की मोटर, 2.5 की, 3 की, लेकिन उसमें एयर होगी तो पानी खींचेगा? ऐसे ही हमारे हृदय में एयर मतलब पाप भरा है, और जब तक पाप भरा है तब तक भगवान का नाम आने वाला, और जैसे ही पाप सब चले जाएंगे ना, उसी क्षण आप कहेंगे कि प्रभु हमको माला करनी है, माला दीजिए, हम निरंतर भगवान का नाम लेंगे। नाम रटते चलो, काम करते चलो, झाड़ू मारना है, पोता मारना है, मंदिर साफ करना है, भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, लेकिन जीभ से है ना भगवान का नाम लेते रहो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, प्रभु का नाम लेते जाओ और भगवान की सेवा करते जाओ। बस संसार में ये नहीं देखना है कि ये बर्बाद हो गया, ये रुपया वाला हो गया, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। अरे केवल आप नाम लेते जाओ, भगवान आपके चरणों में सब कुछ दे देंगे। आपने जो सोचा नहीं होगा ना, वो भी आपके चरणों में सब कुछ आ जाएगा। हमने तो जीवन में अनुभव किया है कि भगवान, हमने जो जीवन में मैंने जो सोचा नहीं है ना, वो भी मेरे चरणों में सब कुछ आ गया। तो भक्ति कीजिए, धन्ना ढगला करी दे से भगवान, भगवान का नाम लेने से, क्योंकि भगवान का नाम अनमोल है, राधे है अनमोल, कहते हैं ना राधा जी का नाम और कृष्ण का नाम अनमोल है, राधे राधे बोल, बरसाने में बोल तू मुख से, राधे राधे बोल। वृंदावन में गए हैं कि नहीं? वृंदावन में डार डार और पात पात पर राधे राधे होए, 2400 घंटा रिक्शा वाला कहेगा, वो घंटी नहीं बजाएगा। यहाँ पर तो मारुति वाला सब क्या करते हैं, रिक्शा वाले साइकिल वाले पौं पौं बजाते हैं, लेकिन वृंदावन में साइकिल वाले भी बोलेंगे राधे 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 राधे, और सब दीवालों पर राधे राधे नाम लिखा होगा, जितने भी पोस्टर होंगे ना सब जगह पर बैनर, तो वहां पर राधा और कृष्ण का फोटो होगा, और यहाँ पर स्त्रियों का सब चरित्र। इस कर्मी जगत में हमको केवल भवकूप में डालने वाले चीज मिलेंगी, फिल्मों के पोस्टर, गलत गलत स्त्रियों के पोस्टर, गलत गलत लिखा हुआ चीज आपको मिलेगा, लेकिन भगवान के धाम में देखिए, आपका मन अगर आपको नहीं भी लगाना है फिर भी आपको लग जाएगा। जैसे ही वृंदावन में आप पैर रखोगे ना, तो तुरंत ही आपको रिक्शा वाला पूछेगा गोवर्धन गोवर्धन, बरसाना बरसाना, नंदगांव गोकुल, वृंदावन वृंदावन, बाके बिहारी, कहां जाना है बताओ, माताजी बताओ कहां जाना है। अरे हमको तो बाके बिहारी जाना है, राधा श्याम सुंदर जाना है, राधा गोविंद देव जाना है। और चलिए आपको ले जाते हैं, देखिए भगवान की भक्ति में कितना सुख है, लेकिन हमको उसमें कंटाला आता है, भगवान की कथा सुनने में, भगवान के धाम में। और यहां पर अगर वीडियो लगा दिया जाए तो सब बाहर, अंदर से बाहर आ जाएंगे तुरंत। और अभी हमारे मन में क्या होता है, चलो अभी उठ जाओ, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया। तो ये भाव बंधन में डालने वाली चीज है। गत जन्मों में भी हमने ऐसा ही किया, भगवान से ईर्ष्या करके भगवान की भक्ति नहीं की तो और एक जन्म लेना पड़ा। और इस जीवन में भी अगर हम भक्ति नहीं करेंगे ना तो और करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे, कुत्ते का, पशु का, हाथी का, पेड़ का, मछली का, कछुए का, ये सब अलग अलग शरीर लेना पड़ेगा हमको। इसलिए भक्तों अपना अस्तित्व जानिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, बस इस संसार में भटकना, दुख सहन करना, यही चीज है। और एक अलग दुनिया है जिसका नाम है गोलोक वृंदावन धाम, मथुरा धाम, वैकुंठ भगवान का धाम है, और वहां पर नित्य निरंतर सुख है। लेकिन उसके लिए आपको ये मनुष्य जीवन है ना, भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। 2400 घंटा में से 24 घंटा में से केवल एक घंटा ठाकुर जी की सेवा में लगाना है, भागवत पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, महाभारत है, भगवत गीता है, भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, ये अगर आप निरंतर करते रहोगे ना तो आपका ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। और ये जो आत्मा जो इस जेल में फंसा हुआ है ना, वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो इस संसार में और फंसने का प्लान मत मारिए, इस संसार में से निकलने का प्लान मारिए। जैसे इस आश्रम का केवल एक ही गेट है, वैसे ही इस 84 लाख योनियों में केवल एक ही गेट है, दरवाजा, वो है मनुष्य शरीर। लेकिन इस मनुष्य शरीर में भी अगर हम व्यर्थ जीवन जिएंगे और भगवान का भजन नहीं करेंगे ना, तो और योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, और मनुष्य, कुत्ता, पशु, अलग अलग योनियों में घूमते रहेंगे। एक के एक बाद श्लोक में शिव जी उपदेश देते हैं कि इस संसार में हर एक जीव को भ्रम हो जाता है कि इसमें मुझे सुख मिलेगा, इस चीज में मुझे सुख मिलेगा। जैसे हाईवे पे हम जाते हैं ना, हाईवे पे तो बहुत गर्मी होती है, गर्मी की सीजन में तो दूर दूर तक हमें क्या लगता है कि यहाँ पर क्या है, पानी है। हाईवे में जाते हैं ना, बस में जाते हैं, आप सफर करते हैं तो दूर तक कैसा लगता है कि वहां पर पानी है, लेकिन जैसे ही उस जगह पे अगर जाएंगे तो पानी आता है, आता है? नहीं होता है। वैसे ही इस संसार में हम सबको भ्रम हो जाता है कि हम कभी कभी अंधेरे में जो रस्सी होती है ना, तो रस्सी में हमें ऐसा लगता है ये सांप है, सांप है, लटकता है तो क्या होता है, सांप है। लेकिन जैसे उजाला कर दोगे तो क्या होगा, ये तो रस्सी है, मुझे तो ऐसा लगा कि ये तो सांप था। ऐसे ही हम सब लोग अज्ञान में है, और अज्ञान में हमें क्या लगता है कि इस संसार में मैं सेट हो जाऊंगा, मैं सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश, हमारे शास्त्र का प्रकाश आता है ना, जैसे भगवान की कथा आती है ना हमारे कान में, तब पता चलता है भाई इस संसार में सेट होने वाले नहीं है, कितना भी मेहनत कर लो लेकिन सेटिंग होने वाला, सेट एक ही जगह पर हो गए, वो है भगवान के कथा में, भगवान के नाम में। तो निरंतर प्रभु का नाम लेना चाहिए। न हस्यास्तित प्रिय कश्चित प्रियस्व परो अपिवा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूत प्रियो हरि। कहते हे सती, इस संसार में भगवान का न तो कोई प्रिय है न तो कोई अप्रिय है, और समस्त प्राणी समस्त प्राणियों से भगवान प्रेम करते हैं। लेकिन देखिए कि भगवान के भक्त चित्रकेतु महाराज का आप जीवन देखिए कि कितने सुशांत है। तस्य चाहम महाभाग चित्रकेतु प्रियो अनुग सर्वत्र सम दृश्य शांतो, सभी जगह पर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आपके हृदय में भी भगवान का दर्शन किया बताइए, और आपने तुरंत ही श्राप दे दिया। तो भगवान के भक्त यहां पर कहते हैं, शिव जी कहते हैं सर्वत्र सम दृक शांतो, भगवान के भक्त हमेशा के लिए शांत होते हैं। तस्मान विस्मय कार्यो पुरुषेषु महात्मसु महापुरुष भक्तेषु शांतेषु समदर्शिषु। हे सती, भगवान के प्रिय भक्त हमेशा के लिए शांत होते हैं, समदर्शी होते हैं, और किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी से भी द्वेष नहीं करते। अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उतना ही दुख हमें मिलेगा, किसी को दुख देते हैं तो उतना ही दुख हमें मिलेगा, किसी की निंदा करते हैं तो उतनी ही निंदा हमारी होगी, अगर किसी को हम सुख प्रदान करते हैं तो उतना ही सुख हमें मिलेगा। भगवान का भक्त का स्वभाव ऐसा होता है कि हर एक जीव को सुख प्रदान करते हैं। स्तुति करते हैं ना कि कोई भी जीव दुखी न हो, वास्तव में भगवान के भक्त का यही स्वभाव होना चाहिए। और आप देखिए, आप किसी से जब मिलते हैं ना, अगर उनके साथ रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है तोबा तोबा, इस स्त्री के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, इस पुरुष के साथ कभी रहना चाहिए, केवल एक हफ्ता रहते हैं ना तो हाथ जोड़ते और इतना जोर से भगवान कभी भी मिला ही नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति का हाथ ऐसे संपर्क में आ जाते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कितने सुंदर है प्रभु जी माता जी, तो हम लोग कहते हैं कि आप हमारे घर पे आइएगा और हमारे घर पे रहिएगा। तो ऐसा स्वभाव ऐसा वाणी रखना चाहिए, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। जीवन में इस शरीर से हमारे देह से ऐसा कार्य करना चाहिए कि सबको सुख मिले। अगर आप ऐसा हर जीव के हृदय में भगवान का दर्शन करोगे ना तो आपको ये माला फेरने की भी जरूरत नहीं है, निश्चित आपको प्रभु मिल जाएंगे। हमारे गुरु महाराज जो सिरोही में थे अभी राजस्थान में, तो उनसे मैंने यही बात किया, पूछा कि गुरु महाराज भक्ति कैसे हृदय में आती है, सार चीज आप बताइए, क्या पूरा दिन माला करने से भक्ति आएगी, 100 माला करो 64 माला करो उससे भक्ति आएगी, कि भागवत पढ़ने से भक्ति आएगी, कि भगवान के धाम में जाने से भक्ति आएगी। तब गुरु महाराज ने कहा साधु संतों की सेवा करने से भक्ति आती है, जो तिलकधारी है, जो भगवान का भक्त है, अर्थात जो भगवान का भक्त अगर कोई उसका रिश्तेदार भी है, परिवार वाला भी है, तो उसकी भी सेवा करने से आपके जीवन में भक्ति आ जाएगी। और ये तो गुरु महाराज ने कहा, लेकिन हमारे शास्त्र में भी बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु, आप लोगों को पता होगा, चैतन्य महाप्रभु उनकी कथा आती है, कि उनके एक बहुत ही करीब के भक्त थे और उनका जमाई चैतन्य महाप्रभु से बहुत, अद्वैत आचार्य, नाम सुना है अद्वैत आचार्य का, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, जो मंत्र बोलते हैं ना, वो अद्वैत आचार्य उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को घर पे बुलाया कि आप हमारे घर पे भोजन करने आओ प्रसाद खाने के लिए। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु पधारे तो उनका जमाई आया और जमाई ने आने के क्योंकि अद्वैत आचार्य ने बहुत सारा भोजन बनाया था, 56 भोग, वे तो साक्षात भगवान है, लेकिन सन्यासी थे। तो उनका जमाई आया और जमाई ने कहा, अरे बाप रे बाप, सन्यासी होकर इतना सारा खाना खा रहा है। और ऐसे ही कहा तो चैतन्य महाप्रभु तो उठकर चले गए। तो कहते हैं ना, उसका जमाई है ना बीमार हो गया, श्राप, उसको कुछ श्राप के कारण उसके जमाई का कहते हैं ना उसको बीमारी लग गया। लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ अच्छा हो गया। जब अद्वैत आचार्य ने कहा ऐसा ही होना चाहिए मेरे जमाई को, क्योंकि महाप्रभु का उसने अपराध किया है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जैसे महाप्रभु को पता चला कि उनके जमाई को ऐसा हुआ है, तो उनकी जो नाक गल गई थी ना वो ठीक हो गई, फिर से ठीक हो गई, और अद्वैत आचार्य और सब लोग आने लगे, उनका उनको दर्शन करने लगे। तब चैतन्य महाप्रभु ने सबके बीच में कहा कि जिस घर में भगवान की भक्ति होती है ना, उस घर का अगर कोई भी सदस्य हो, चाहे क्यों ना वो भक्ति नहीं करता है, लेकिन मैं उसे प्रेम करता हूं। अरे भक्तों, इतना आप सुन लो, अगर उस परिवार का अगर कोई कुत्ता भी है ना, वो कुत्ता भी भगवान के धाम में चला जाएगा। अगर कोई भक्ति करता है, अगर उस परिवार में अगर छोटा कुत्ता भी कर कोई पशु भी है ना, तो भी भक्ति करता है। ये तो अद्वैत आचार्य का जमाई है, तो इसका क्यों नहीं कल्याण होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि अगर कोई भक्त है और उसके संपर्क में भी कोई रिश्तेदार है, परिवार वाला है, अगर उनकी भी कोई सेवा करेगा ना, तो उसे उतना ही फल प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में इस बात को याद रखिए कि ये देह मिला है ना आपको, इस देह से आप भगवान के भक्तों की सेवा कीजिए, और सेवा करने से ठाकुर जी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न होते हैं। हृदय पूर्वक भक्तों की सेवा करना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं, शांता समदृशा, सबके हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। अगर आपने किसी की सेवा की है ना, तो उसके हृदय में कौन है, भगवान है, बताइए। अगर आपने किसी का सेवा किया है, कुछ कार्य किया है, किसी को धन दिया है, खाना खिलाया है, किसी का सेवा किया है, किसी को आप हॉस्पिटल ले गए, भगवान के धाम में ले गए, तो आपका धन और ये शरीर है ना वो सार्थक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके हृदय में रहे हुए भगवान की सेवा की है, परमात्मा की सेवा की है। हम सबके हृदय में कौन है, भगवान है, परमात्मा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं उसको इतना दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा, बताओ। हमारा सब हिसाब किताब होता है कि मेरे पास 100 रुपया है, आ गया ऑटोमेटिक जादू से, मेरे पास 100 रुपया है, मैं उसको 50 रुपया दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो 50 ही होगा। लेकिन अगर आपने 100 रुपया में से 50 रुपया दे दिया ना, तो ठाकुर जी के हाथ कितने हैं, 1000 हाथ वाले हैं, वो आपको 1000 गुना आपको दे देंगे, और आप 2 हाथ वाले कितना जमा करोगे, बताओ। और अगर आप सोचोगे कि नहीं, मैं क्यों भगवान की सेवा में पैसा दे दूं, लक्ष्मी दे दूं, मैं दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, तो भगवान बोलते हैं मैं ले लूंगा, तो बोलते हैं ना, भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और लेते हैं तो झाड़ू पोछा मार के ले लेते हैं, सब कुछ, कुछ भी नहीं रखते। तो भगवान की सेवा में उस धन को नहीं लगाओगे ना, तो वही धन डॉक्टर ले लेगा, हॉस्पिटल में ले लेते हैं ना, डॉक्टर बोलेगा लाओ 20,000 जमा कराओ, हाँ तुरंत जेब में से निकाल के दे देंगे। लेकिन अगर कोई दान पुण्य करना है, तो कोई करेगा? नहीं कर पाएगा। हमारे बैंक में 5 लाख रुपया पड़ा है, 10 लाख पड़ा है, करोड़ों रुपया पड़ा है, लेकिन अगर कोई कहेगा कि मंदिर में भक्तों की सेवा में लगाइए, कि हमको मंदिर बनाना है, कि कोई जमीन खरीदनी है, तो आप धन की लक्ष्मी की सेवा कीजिए। अभी तो वो मोदी साहब ने क्या, नोट बंद हो गया ना, तो अभी बरोबर नहीं चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन होगा या कुछ भी, उदाहरण दे रहा हूं। हमारे घर में अगर कोई बड़ा चीज हो गया तो नोट निकलती कि नहीं निकलती है? फटाफट निकलती है तुरंत। कोर्ट में जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी हो गया है। हमारे घर अभी मंदिर में आए थे, इस बगल के गांव के हैं, कहते एक साथ 4 लाख रुपए का खर्चा हो गया, 4 लाख एमरेज हो गया, नस फट गई। उनको पता था कि मर जाने वाले हैं हमारे घर के सदस्य, लेकिन फिर भी 4 लाख खर्चा करके भी 2 दिन केवल वो वेंटिलेटर पे, बोलते हैं ना, मशीन में केवल जिंदा रहे। जिंदा भी नहीं थे, लेकिन डॉक्टर ने बोला कोशिश करते हैं, लेकिन 4 लाख रुपया खर्चा हो गया। बोलिए, ये अगर उनको कहेंगे, किसी को कहेंगे कि आप धर्म में कुछ 1 लाख खर्चा कीजिए, तो नहीं। और डॉक्टर वहां पर 5 लाख बोलता तो 5 लाख भी दे देते थे, बताओ। 10 बोलते तो 10। इसलिए कह रहे, अगर वो धन हमारा कमाया हुआ धन अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं ना, तो ऐसे गलत कार्य में हमारा धन चला जाता है। इसलिए भगवान जो हमें देते हैं ना, उसमें भगवान का भी भाग होता है। उस भाग को भगवान की सेवा में लगाइए। 5,000 में से 100 रुपया देने में क्या हर्ज है? अगर हम 5,000 हर महीना कमाते हैं तो 200 रुपया, मतलब 2 टका हुआ ना, 4,800 रुपया हमारा, 5,000, उसमें से 200 रुपया ठाकुर जी की सेवा में लगना चाहिए। अगर कोई 50,000 कमाता है तो उसमें से भगवान का भाग है। इसलिए निरंतर इस बात को याद रखिए कि हम जो भी कमाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें ठाकुर जी का भाग है। भगवान ने हमें ये शरीर दिया है तो इस शरीर में भी भगवान का भाग है कि 1-2 घंटा हम भगवान की सेवा में लगाए। नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूं, मुझे काम समय नहीं है, लेकिन भगवान फिर वायर, यहाँ का जो वायर है ना, कनेक्शन क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। इसलिए भगवान की सेवा में इस देह को लगाइए, इस शरीर को ठाकुर जी की सेवा में लगाइए। हमें जो धन मिला है, इस धन को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इति भागवतो देव्या पति सप्त मलन्मत मुर्दा संजंगृहे शापेम एतावत् साधु लक्षणम्। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु महाराज श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने श्राप नहीं दिया, और वो जो उन्होंने जो श्राप दिया था वो अपने सर पे धारण कर दिया। तो ये है भक्त का स्वभाव। हे सती, देखिए आप इतने कहते हैं ना, इतने बड़े ऊंचे पद पर है, लेकिन आप में ये दिमाग नहीं है। लेकिन चित्रकेतु महाराज देखिए, एक भी शब्द नहीं बोला और कहते अपने विमान में बैठकर चले गए। तो भक्त का स्वभाव ऐसा होता है, पर दुखे उपकार करे पर मन अभिमान न आने। हर जीवों के ऊपर उपकार करते हैं, ये जीव का स्वभाव होना चाहिए। बताइए, हमारे कुटुंब में एक भक्त, अगर एक व्यक्ति भी ऐसा हो गया ना, तो पूरे कुल को, पूरे कुटुंब को तार देता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर खराब निकला ना, तो जो तर गए हैं ना, उसको भी भवकुप में डाल देगा। बताइए, अगर एक व्यक्ति सुधरने से 100 व्यक्ति सुधर जाते हैं, अगर 100 व्यक्ति सुधर गए तो पूरा गांव सुधर जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें सुधरना है, हमारी बुरी आदतों को सुधारना है, और हमारे पास जो धन है ना, हमारे पास जो कला है उस कला को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए कि मुझे ये आता है तो इस कला को मैं भगवान की सेवा में लगाता हूँ। जैसे कई भक्त है यहाँ पर जो उनके वो जो काम धंधा करते हैं उस काम धंधे के जो भी मिलता है वो ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं कि मेरे को ये बनाने को आता है तो इस कार्य को मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। इससे हमारी कला और बढ़ेगी। जैसे मुझे कथा करना आता है तो मैं रात दिन कथा करता हूँ अलग अलग गांव में अलग अलग सिटी में, और जितनी कथा करता हूँ उतना मेरा ज्ञान और भक्ति मेरी बढ़ती है। तो देने से बढ़ता है, आप जितना दोगे ना उतना आपके जीवन में ज्ञान भक्ति सब कुछ बढ़ेगा। इसलिए जीवन में हमेशा देने का विचार रखना चाहिए, लेने का कम रखना चाहिए विचार कि मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे कुछ मिल जाएगा। नहीं, मुझे कुछ देना है ठाकुर जी को, और क्या लेना है? ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी का आशीर्वाद लेना है। तो देने से कभी भी कम नहीं होगा, जितना आप दोगे उतना ही आप जीवन में प्रगति के पंथ पर होगे। तो यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि साधुओं का स्वभाव ऐसा होता है, जैसे द्रौपदी के 5 लड़कों को मार दिया था। भागवत में वर्णन है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 लड़कों को मार दिया था गला काट के, को पता है ना, और उनके मस्तक गोनी में भर के दुर्योधन के पास ले गया। अरे मित्र देख, आज मैं तेरे लिए मैंने क्या किया, 5 पांडवों के मस्तक को काट कर लाया हूं। तब दुर्योधन ने कहा, हो ही नहीं सकता है, बता जिस समय तू पांडवों के मस्तक काटने गया था उस समय भगवान कहां पर थे? क्योंकि मैंने 18 दिन के युद्ध में मैंने इतना तो जान लिया है कि जहां पर भगवान है ना वहां पर भक्त का कभी अपयश नहीं होता है। मैंने इतना तो जान लिया है। अरे मित्र तुझे पता नहीं है, मुझे पता था तुझे विश्वास नहीं आता है, इसलिए 5 पांडवों के मस्तक में गोनी में भर के लाया हूं, देख ले। और जैसे गोली जो गोनी है ना नीचे डाला तो 5 लोगों के मस्तक थे, लेकिन अंधेरा था, अमावस्या की रात थी और अंधेरे में दिखता नहीं था, लेकिन कहते हैं इसमें भीम का मस्तक है ना, मैं पहचान जाऊंगा, दुर्योधन कहता है। और जैसे ही वो मस्तक दबाया ना, पच पच जैसे एक नरम नरम आम होता है ना, आम शक्कर टेटी, उसको कोई ऐसा दबाएगा तो कैसे नरम नरम, ऐसे उसका मस्तक दबाया ना सब दब गया पूरा। एक एक 5 पांडवों के मस्तक थे ना, उनके लड़के के मस्तक थे, और जैसे ऐसा करके खोपड़ी ऐसा दबाया ना सब पच पच करके सब पांचों के पांचों चले गए। तब दुर्योधन को बहुत शोक हुआ। और यहां पर अर्जुन रथ लेकर दौड़ रहा है, द्रौपदी चिंता मत करो, तुम्हारे 5 लड़कों को जिसने मारा है ना शाम तक मैं उसको तुम्हारे चरणों में हाजिर करके रहूंगा। और जैसे ही शाम हुई अश्वत्थामा को घसीटते घसीटते लेके आए, द्रौपदी ये तुम्हारा शत्रु है इसे मार दो, लेकिन द्रौपदी क्या कहती है, मुच्यताम मुच्यताम एष, छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। देखिए द्रौपदी का भाव, एष गुरु साक्षात, ये साक्षात कहते आपके गुरु के पुत्र है, और गुरु की अनुपस्थिति में गुरु का पुत्र ही गुरु के समान पूजनीय है, इसलिए इसे छोड़ दो। बताइए जिसके 5-5 लड़के मारे गए हैं, गए रात को हमारे 5 लड़कों को कोई मार दिया है और कल सुबह किसी ने हाजिर कर दिया कि ये तुम्हारा शत्रु है, तो इसको पुलिस में डालते कि नहीं डालते बताओ? अरे छोटा सा भी गाड़ी का भी एक्सीडेंट कर देते हैं ना तो तुरंत पुलिस वाले को फोन करते हैं, अरे इसको पकड़ के रखो, इसको जेल में डालना है और पैसा वसूल करना है, बताओ? लेकिन यहाँ पर द्रौपदी के 5 लड़के मर गए हैं, लेकिन अश्वत्थामा को कहते हैं कि अर्जुन को कहते कि इसे छोड़ दो। बताइए ये है साधु का स्वभाव। पांच पांच लड़के मरे हुए पड़े हैं सामने मुर्दा, और उनका शत्रु उनका दुश्मन उनको मारने वाला सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी कहते मुच्छताम मुच्छताम इसको छोड़ दो। और अर्जुन को अपने पति देव को कहते हैं कि आप इनको मार रहे हैं जिनके पास आपने अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी है, उनके लड़के को मार रहे हो, छोड़ दो। अगर ये अश्वत्थामा मर गया तो इनकी माता को कृपी इनको क्या लगेगा, कितना दुख लगेगा, इसलिए छोड़ दो इसे। तो इस प्रकार से ये साधु का स्वभाव होता है। सुखदेव जी ने जब ये कथा कही, परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे परीक्षित, आपने जिस प्रकार से पूछा था वैसे ही मैंने वित्रासुर के अगले जीवन की कथा, इस जीवन की कथा, मैंने सब कुछ कथा की, और इस महात्मा चित्रकेतु का पवित्र वृतांत एकमात्र उनका ही नहीं समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है, और इसे जो सुनता है वो भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, इस कथा को जो निरंतर सुनता है, कहते उसका क्या होता है, वो हमेशा के लिए भाव बंधन में से मुक्त हो जाएगा। और जो मनुष्य प्रातः काल में उठकर मौन रहकर श्रद्धा सहित भगवान का स्मरण करता है और इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। ये हमने कम से कम 1.5 साल से ये कथा सुन रहे हैं। चित्रकेतु महाराज वही वित्रासुर राक्षस बने थे, तो 1.5 साल तक ये कथा चली, और आज इस कथा को हम विराम दे रहे हैं। और इस कथा का फल क्या है, तो कहते हैं कि हे परीक्षित, इस कथा को प्रातः काल में अगर कोई सुनता है, सुबह में उठकर इसका कोई पाठ करता है, तो वो भव बंधन में से छूटकर उसे परम गति प्राप्त होती है। बताइए, और हम तो 1.5 साल से इस कथा को सुन रहे हैं, प्रति रविवार को, हर रविवार को यहाँ पर यही चित्रकेतु महाराज। और इनको जब श्राप मिला तो दूसरे जन्म में वित्रासुर नाम के राक्षस बने थे, और यही चित्रकेतु महाराज कहते हैं भगवान के धाम में चले गए। तो इसी प्रकार से हमें भी हमारे जीवन में इस कार्य को अगर हम जीवन में उतारेंगे ना, तो हम भी जीवन में सुखी होंगे, भगवान की भक्ति करने से सुखी होंगे। संसार की सेवा करने से सुख नहीं मिलेगा, वो तो भव बंधन मिलेगा। और आप इस जीवन में अनुभव भी कर रहे हैं कि संसारियों की सेवा करने से आपको दुख मिल रहा है। बताइए, जिस बेटे की सेवा करते हैं, जिस बहू की सेवा करते हैं, जिस परिवार की कुटुंब की सेवा कर रहे हैं, वही लोग आपको गाली दे रहे हैं, कोई बाहर का नहीं दे रहा है, लेकिन वही परिवार हमको अच्छा लग रहा है, बताओ। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और इस जीवन को ठाकुर जी की सेवा में लगाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो यहाँ पर प्रति रविवार को यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम होता है, और आप लोग अगर यहाँ पर रहते हैं तो आप लोग प्रति रविवार को यहाँ पर आइए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण।